તારીખ 21/9/1997 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 37.
ભગવાન હી હૈ.
ભગવાન
કી જાતિ ક્યા? ભગવાન હી હૈ. સોતા કહેતા હે સાહેબ, આપને તો ભગવાન હી બના દિયા. બનાયા નહીં હૈ, બના હુઆ ભગવાન હી હૈ. ભગવાન એસા બતાયા હૈ, તેરે એસા વિશ્વાસ લા કે તું ભગવાન હી હૈ.
બરાબર.
ક્યા અર્થ હૈ ઇસકા?
વિશ્વાસ બિના પહેચાન આઈ જી ને. કલ ચર્ચા હુઈ થી કે હમારી આત્મા હૈ વો બનિયા જૈસા હૈ, તૈસા દેખતા હૈ તો માનતા હૈ કે વો માલ લેને વાલા હૈ. એસા બાતોં સે વિશ્વાસ હમે નહીં આતા. ઇસકા સબૂત વો હૈ કે હમકો પુકાર પુકાર કે ભગવાન કહા, ફિર ભી હમારી દીનતા મેં ક્યા ફરક પડા. હા
જી,
તો વાત જાનને મેં નહીં આઈ. વિશ્વાસ નહીં કિયા, સંમત નહીં કિયા. ગુરુ કો એસા નહીં બોલા કે આપ એસે ક્યાં બોલતે હો. કહેતા હૈ કે બરાબર હૈ સાહેબ, વૈસી બાત હૈ, હમકો ભી સમજ મેં આતા હૈ, ન્યાય સે યુક્તિ સે આગમ સે. ફિર ભી વિશ્વાસ પર જમતા ઉલ્ટા વિશ્વાસ ઉઠને કી કોઈ પ્રક્રિયા હોતી હૈ, તબ ઉઠતા હૈ. ઉસકે પહેલે વિશ્વાસ ઉઠતા નહીં. વિશ્વાસ હોના, લક્ષણ હોના, પહેચાન હોના, ભાવવાસન હોના, પ્રતીક હોના, એ સબ એક બાત હૈ. તો ઉસ તરહ સે ઉસ તરહ સે જો વિશ્વાસ નહીં આતા હૈ, ઇસકા કારણ વો હૈ. વિશ્વાસ હમારા મન મેં સુખ હૈ, આધાર બુદ્ધિ હૈ, સુખ બુદ્ધિ હૈ, વો ટૂટી ગઈ. તો ઉઠને કા કોઈ પ્રોસેસ ક્યા હૈ? કહેને માત્ર સે ઉનને માત્ર સે અચ્છા લગતા હૈ, તો ઇસસે કોઈ કામ નહીં બન જાતા. એસી બાત હૈ.
વિશ્વાસ લાને સે પહેલે તો વો બાત કો સમજના પડેગા ના?
હાં,
उसको बात समझ. बात तो शब्दों में ही आएगी.
हाँ, पता है कि बात तो शब्दों में आएगी, हमने समझी भी, ये सब कुछ तो हो चुका. इसमें प्रैक्टिकली जो होना चाहिए विश्वास आने में, वो नहीं हुआ. ये पद्धति का फर्क है. वो पद्धति हमें समझनी चाहिए कि ज्ञान में किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से काम किया, हमें भी उसी तरह से करना है. तो समझ समझ है, प्रयोग प्रयोग है. दशा प्रयोग से बदलती है. सिर्फ समझ से या सम्मति होने से काम पूरा होता नहीं है. और इसका सबूत हम खुद ही है. गुरुदेव ने जो बात समझाई हजारों लोगों से, वो समझी है. समझी क्या है? दूसरे को समझाते हैं वो लोग, ऐसी समझी है. किसी परिस्थिति में फर्क नहीं है, अंदर में सबको उलझन है कि इतना समय चला गया, अभी तो उन्होंने लगा उनको अनुभव तो हुआ नहीं. तो अनुभव के लिए अनुभव पद्धति जो होनी चाहिए, वो पद्धति नहीं होने से हमारी बात विचार दशा तक रही, विकल्प तक रही, समझ तक रही, इससे आगे नहीं बढ़ी. हमको उसको प्रयोगान्वित करना चाहिए. वो बात की चर्चा भी हमारे यहाँ नहीं है. और किस क्रम से वो प्रयोग करना चाहिए, इसकी चर्चा भी हमारे यहाँ अभी नहीं है. इसी कारण से वो काम नहीं हो रहा है. ऐसी बात है.
तो जो प्रयोग की बात है, वो पर्याय लब्धि की बात है, इसमें कोई और अंतर है? लब्धियों में चार लब्धियाँ हैं. लब्धियों में चार लब्धियाँ हैं. उसमें जो पर्याय लब्धि है, वो प्रयोग की बात प्रयोग लब्धि से संबंधित है, तो उसमें अन्य कुछ नहीं है.
प्राय लब्धि अलग चीज है और प्रयोग होना अलग चीज है. प्राय लब्धि कुछ एक प्रकार की योग्यता को कहते हैं, जिसमें दर्शन होता अंतकोड़ा कोड़ी की स्थिति को आ जाना. उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की है, तो अंतकोड़ा कोड़ी में आ जाए तो उसको कहते हैं कि प्राय लब्धि हुई. लेकिन यहाँ तो इससे आगे जाना है. जो पात्रता का विषय है, उसमें तो दर्शन मौका अनुहार हरेक प्रयोग से उतना टूटता है, उतना टूटता है. तो उसको आगे जाकर के प्रभु का विश्वास आ जाता है, अनुभवान से प्रतीति होती है, उसको विश्वास कहते हैं। बातों से मान लिया वो विश्वास सही, विश्वास नहीं है, इसका कारण वो है कि हमारी मुख्यता राग की रही। राग और ज्ञान दोनों परिणाम करता है, दोपहर का स्वाध्याय चला, उसमें राग है तो मैं ऐसा राग का अवलंबन वाली स्थिति में ज्ञान विचार बलवान नहीं होता, इसलिए वो निश्चय सही निश्चय नहीं है, वो विश्वास सही विश्वास नहीं है, क्योंकि इसका आधार राग है, इसका आधार ज्ञान नहीं है। जब तक स्वरूप निश्चय होता है उसमें ज्ञान लक्षण से ज्ञान का आधार से ज्ञान क्रिया के आधार से ज्ञान स्वभाव का निश्चय होता है, और उस वक्त राग का अवलंबन कुछ अंश में टूटता है, इसलिए सही निश्चय है, ये सही विश्वास है। पर ऐसा विश्वास आते ही सारे जगत में कोई भी पदार्थ का आधार बुद्धि और सुख बुद्धि में फर्क पड़ जाता है बड़ा, कि कहीं सुख नहीं है, कहीं मेरा आधार नहीं है, मेरा स्वरूप ही मेरे अवलंबन के योग्य है और उसमें ही पूरा सुख है। ये विश्वास उनका विश्वास को तोड़ता हुआ पैदा होता है, और इसका आधार है ज्ञान। ज्ञान के आधार से जो विश्वास आया और राग के आधार से जो विश्वास आया उसमें बहुत बड़ा फर्क है। राग के आधार से जो विश्वास आया है वो विश्वास को सही विश्वास मानना ये एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव का निश्चय करो, विश्वास करो। फिर भी हम उस पद्धति में नहीं जा करके सुंदर के और न्याय युक्ति से सम्मत करके राग की प्रधानता में मान लेते हैं कि हमको सम्मत हुआ विश्वास हुआ, तो ये आधार ही गलत होने से है कि विश्वास टिकने वाला नहीं है, और वो विश्वास सही विश्वास यथार्थ विश्वास है भी नहीं, क्योंकि आधार ही उसका खोटा है। आधार है वो अनात्मा का आधार है, आत्मा का आधार नहीं मानो, और ज्ञान का आधार हो तो आत्मा का आधार है, बहुत बड़ा फर्क है। वो अंतर कोड़े कोड़े मैंने एक कोड़ा कोई कागज के अंदर, उसको अंतर कोड़ा कोड़े कहते हैं, एक के अंतर
कितना भी हो सकता है
जी,
कितना भी हो सकता है
जी,
एक सागर दो सागर अंतर कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा हो सकता है।
अंतर मैंने अंदर एक के अंदर की स्थिति,
एक करोड़
गुणा
एक करोड़ के अंदर,
और एक कोड़ा कोड़े सागर हुआ तो उत्कट स्थिति दर्शन नवमी प्रकृति की 70 कोड़ा कोड़े सागर है, उसमें से एक कोड़ा कोड़े सागर के अंदर आ गया स्थिति संक्षिप्त होकर के संक्रमण अपकर्षण होकर के, उसको कहते हैं कि अंतर कोड़ा कोड़े सागर में आ गया, और वो प्रायोग लगती है नहीं पूर्व में जो बंधे हुए वो उसकी स्थिति पड़ी है।
इसमें जो है 18 नंबर में उन्होंने लिखा है, भाई तू विश्वास ला कि मेरे स्वभाव के आनंद के समक्ष सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया विस्मित हो जाए, ऐसी अद्भुत वस्तु में हूँ मैं, वर्तमान में परमात्मा ही हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा विश्वास आने पर अंतर छूट जाएगा और पर्याय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। एक तो ये लिया
बात विश्वास की वो किस आधार से आपने विश्वास किया, विकल्प के आधार से कहा किया या ज्ञान के आधार से?
आधार तो उन्होंने नीचे 21 में दिया है,
है?
आधार तो उन्होंने 21 में पैराग्राफ में दिया है। आधार उन्होंने लिया है, पहले से संस्कार डालना चाहिए कि मैं सिद्ध हूँ शुद्ध हूँ परमात्मा ही हूँ, इसका आधार दिया है।
हाँ, तो संस्कार कब डलता है? रुचि जमती है तब डलता है, तो ये एक रुचि का विषय हो गया। संस्कार कब होता है? दो उसका स्टेज है संस्कार डलने का, एक अव्यक्त रुचि का और एक व्यक्त रुचि का। व्यक्त रुचि भाव भाषण के कारण होती है और अव्यक्त रुचि कभी भी होती है किसी भी जीव को, और रुचि के कारण ही संस्कार बनता है और दूसरे कोई प्रकार संस्कार पड़ने का है ही नहीं। तो अगर संस्कार पड़ जाता है तो ये संस्कार कभी भी अंदर से बाहर निकल करके योग्य परिस्थिति में ले आता है।
तो रुचि बदलने के लिए कोई वस्तु सामने मैं सिर्फ हूँ परमात्मा, तभी रुचि बदलेगी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं शरीर ही हूँ अंदर में, इस प्रकार का अंदर में जो भाव होगा उसी से रुचि बदलेगी कि इसका कोई अन्य कोई उपाय है?
रुचि जरूरत से ही उत्पन्न होती है, बिना जरूरत उत्पन्न नहीं होती है। पहले से किसी को परमात्मा का नजर नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है और ऐसे तो इस प्रभात में नजर आने का सवाल ही नहीं है। जब अपने को जरूरत लगती है तो मुझे ये संसार के परिभ्रमण के चार गति के दुख नहीं चाहिए और दुख के कारणभूत जो भी परिणाम है वो भी मुझे नहीं चाहिए और किसी कीमत पे नहीं चाहिए, ऐसी जब जरूरत लगती है वहाँ से रुचि पैदा होती है। फिर भी हमको ये साधारण रुचि पर कोई मदार कोई आभार हमें नहीं रखना है, हमें तो पहचान तक पहुँचना ही है और पहचान तक पहुँचने का जो भी प्रोसेस है उसको ज्ञानी ने जो बताया उसको ही फॉलोअप करना है। हमारी मनमानी सचल प्रवृत्ति हमको नहीं करनी है, इस ऐसे समझ ऐसा निश्चय हमको पहले से होना चाहिए। करना क्या होगा कि हम हमारी मनमानी कर लेंगे, जो भी शास्त्र मिला पढ़ लेंगे, उस पर हमारा जो कल्पना है निश्चय है अभिप्राय है बना लेंगे और वो अभिप्राय को दृढ़ करते रहेंगे। जो भी हम हमको अनुकूल वचन मिलेगा हमारा अभिप्राय दृढ़ करते रहेंगे, ये भी करना है। हमें प्रैक्टिकली उस प्रोसेस में जाना है जो ज्ञानियों ने बताया है और उसी आधार पर काम करना है। हमारे मति कल्पना से कोई नई पद्धति से या कोई काल्पनिक पद्धति से
कोई
वस्तु वस्तु स्थापित नहीं, वो खोज का विषय है।
नहीं खोज मतलब किसकी खोज करना है कि जैसे हम खोज करने जाए या पहचान करने जाएंगे
स्वभाव की खोज
करने के लिए हमें कोई चीज को सामने लक्षण है
ना? नहीं, वो मैटरियल क्वेश्चन है, स्वभाव की खोज कर रहा है, हमको मालूम नहीं है। अनादि से हमारा स्वरूप कैसा है वो हमको मालूम है ही नहीं, तो मालूम नहीं है तो मालूम करने के लिए हमको खोज करनी है और खोज है तो हमारी जिज्ञासा का विषय है।
तो खोज तो ज्ञानी ने बताया कि तू अंदर में परमात्मा है, वो तो शरीर ही है,
वो तो शब्द
बताया,
वो तो शब्द हुआ लेकिन भाव भाषण तो होना चाहिए।
शब्द के द्वारा शब्द तो पहले
सब
आएंगे,
सब तो पहले क्या हजार बार आ गया भावभाषण में और उसका मतलब क्या हुआ?
भावभाषण तो अपनी भूल है।
हाँ तो भूल है तो भूल क्यों हुई? भूल हो रही कि भावभाषण के लिए जो प्रोसेस करना चाहिए वो नहीं किया और शब्द को पकड़ कर अंदर जो ये तो गड़बड़ हो गई,
उसको पकड़ के बैठ गए भूल है।
हाँ
ये वो शब्द शुरुआत में ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे?
शुरुआत में 50 साल तक शुरुआत रखनी है क्या? नाटक शुरुआत रखनी है वो तो बताइए आप।
जब तक वस्तु की प्राप्ति है तब शुरुआत ये
नहीं, ये हमको अगर हमारी मनमानी करनी है तो कतई होने वाला नहीं है काम।
तो आदम के आधार से कह रहे हैं?
नहीं, आदम के आधार आप गलत रहते हैं, आपके अभिप्राय को पुष्ट करते हैं हर जगह और मूल चीज पर आते हैं, बताते हुए भी आते नहीं है कि जो आपकी पकड़ है वो तो पकड़ से कोई काम होने वाला है ये कभी भी, अभी तक हुआ नहीं और कभी हो जाने की ये समझना। और भी प्रश्न है? परिणमी निश्चय से अपने परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का करता है, तथापि पूर्व पर्याय का व्यय करता यह प्रश्न किस प्रकार से है? पूर्व पर्याय का व्यय करता यह प्रश्न किस प्रकार से है? ऐसे है कि नैसे और प्रमाण से दो प्रकार के कथन हमारे आगमों में चला है, नैसे और प्रमाण से। तो परिणामी अपने परिणाम का करता है तो प्रमाण का कथन है, तो प्रमाण का कथन है और पर्याय पर्याय का करता है, यह व्यय का करता है, उसका उत्पादकार करता है, इन नए का कथन है। वो भी नए सही कब है, प्रमाण पूर्वक होता है तब, क्योंकि अकेला नए वो नया भास है, वो नए नहीं है। प्रमाण पूर्वक ही नए की प्रवृत्ति होती है और कथन करने वाले को ऐसा ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। तत्व चर्चा स्वाध्याय में रहने वाले सर्वार्थ जी के देव को देव की अपेक्षा पांचवें गोस्थानवर्ती पशु के शांति विशेष होती है क्या? ठीक है, होती ही है। चतुर्थ गोस्थान से पंचम गोस्थान में आत्म शांति विशेष होती ही है, क्योंकि स्वरूप स्थिरता बढ़ गई वहाँ, जितनी स्वरूप में स्थिरता बढ़ी उतनी आत्मशांति बढ़ेगी, जितनी स्वरूप स्थिरता बढ़ी उतनी आत्मशांति बढ़ेगी। पंचम गुण स्थान चाहे पशु का हो शांति विशेष है, और चतुर्थ गुण स्थान चाहे सर्वार्थ सिद्धि देव का हो शांति इससे कम है, ये बात जरूर है। तब पर चर्चा वही भाव है और ये आत्मभाव है, दोनों में फर्क है।
कल आने जाने विशेष ज्ञान का अगर अपराध है, न्याय जो आपने किया।
हाँ हाँ, ज्ञान का उपयोग है उसमें अनेक ज्ञेय आता है, अनेक ज्ञेय का जो ज्ञान होता है ये ज्ञान की विशेषताएं हैं, इसलिए उसको ज्ञान विशेष कहते हैं। उसी वक्त ज्ञान ज्ञान रूप रहता है जिसमें कोई विशेषता नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञान सामान। उसका एक दृष्टांत ले ले, स्फटिक पत्थर है, स्फटिक पत्थर में पारदर्शकता होती है, निर्मलता पारदर्शकता। उस पारदर्शकता की वजह से जो भी कलर वाला पदार्थ कपड़ा हो फूल हो इसके समीप आता है, सारा स्फटिक पत्थर पूरी रंग को धारण कर लेता है। लाल कपड़ा आया स्फटिक लाल दिखेगा, तो लाल पना हुआ, पीला पना हुआ, काला पना हुआ, जो भी जितना जितना अलग अलग कलर आया वो स्फटिक की विशेष पर्याय है। उसी वक्त निर्मलता यूं की यूं है, चली नहीं गई, स्फटिक काला दिखने से उसकी निर्मलता में कोई फर्क नहीं पड़ा। उतना ही नहीं, निर्मलता के कारण से वो काला दिखता है। दूसरे पत्थर होते हैं सामान्य, उसमें ऐसी निर्मलता नहीं है, तो उसके पास कोई भी कपड़ा फूल आएगा उसमें कोई कलर आएगा नहीं।
प्रश्न है वो एक बात काफी बराबर है, लेकिन जिस समय गेयाकार ज्ञान हो रहा है उस समय सामान्य ज्ञान को गेयाकार में, क्योंकि जानने में तो गेयाकार को लग गया ज्ञान का काम था, वो तो गेयाकारों को जानने उस समय, लेकिन तो सामान्य ज्ञान को उस समय कैसे जाने? दृष्टांत से तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बात नहीं आती। प्रैक्टिकल के समय तो ज्ञान उस समय गेयाकार होकर रह जाता,
ऐसा है
ज्ञान सामान्य में तो दृष्टि नहीं पहुँच पाती।
यही तो सूक्ष्मता है इस विषय की, इस विषय की अगर कोई सूक्ष्मता है तो यही है, हमको ज्ञान के पर्याय में ज्ञान स्वभाव क्यों नहीं दिखता है, यही कारण से नहीं दिखता है। क्यों? कि स्वभाव है वो सामान्य है, और ज्ञान का सामान्यपना वो स्वभाव सदृश है। जहाँ तक हमको ज्ञान सामान्य नहीं मालूम पड़ेगा, वहां तक हमारा स्वभाव परमात्मा मालूम नहीं पड़ेगा। चाहे हूँ परमात्मा, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, कितना ही रटन लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये जो ज्ञान सामान्य है, यहाँ से जो विश्वास निश्चय भाववासन होता है, यहाँ से ही स्वभाव की पहचान होती है और यहाँ से ही स्वरूप सम्मोहता होती है। इसके पहले स्वरूप सम्मोहता
नहीं, इसको पकड़ने की क्या कला?
हाँ, पकड़ने की जो कला है उसमें प्रैक्टिस पहले होती है अवलोकन की। क्योंकि ज्ञान ज्ञान का अवलोकन करे तब तो ज्ञान में जो खूबियां हैं वो मालूम पड़ेगी। ज्ञान में खूबियां, जो जो खूबियां हैं, बहुत सी खूबियां हैं, ये तो दो ही बताइए आपने कि ज्ञान में सुख है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में वेदन है, लेकिन बहुत सी खूबियां हैं। क्योंकि एक गुण अनंत गुण का रूप को धारण करता है, हमने अनंत गुण के रूप के साथ प्रयोजन नहीं है, हमको प्रयोजन सुखी होने का ही है। इसलिए सुख कब दिखेगा? ज्ञान सामान्य कसाय रहित, कसाई की फोटो ज्ञान विशेष में पड़ती है। रात को किसमें जाना? ज्ञान विशेष में। क्रोध को किसमें जाना? ज्ञान विशेष में। ज्ञान सामान्य में तो प्रतिबिंब की पहुंच नहीं है, वो तो एक रूप रहता है पर वो वेदन स्वरूप है। तो अवलोकन लगातार अवलोकन जिसका रहता है,
आपने एक शब्द का वेदन स्वरूप है, लेकिन उस समय तो वेदन ही क्या पर होने लगता है, ज्ञान सामान्य का वेदन भी नहीं हो पाता।
नहीं हो पाता, इसका काम तो हमारा उल्टा अभ्यास का नहीं है और हमारा अभिप्राय भी गलत है। जैसे कि ठंड हमें लगी, गलत अभिप्राय, ठंड ज्ञान तो लगती नहीं, जानने में लगती नहीं, लेकिन हमारा उल्टा अभिप्राय। तो हम वेदन करेंगे ठंडी का, अनुभव करेंगे ठंडी का, ठंड का अनुभव करेंगे, वो गलत है। हमारा मिथ्या मिथ्या अनुभव है, वो सही अनुभव नहीं है।
तो जब वास्तव में उस समय ठंडी लग रही होती
है? नहीं
नहीं, आप जो मिथ्या शब्द कहने में आ रहे हैं, वास्तव में क्या उस समय ठंडी होती है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ज्ञान बिल्कुल ठंडा नहीं होता। अगर जो आत्मा को ठंड लगती तो ज्ञान ठंडा हो जाता, अगर बुखार आत्मा को होता तो ज्ञान गर्म हो जाता। ज्ञान कभी न गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ठंडा गर्म को ज्ञान होता है, ऐसी बात है। और वही तो प्रयोग करते हैं मुनिराज। मुनिराज नग्न दिगंबर जंगल में कैसे रहते हैं? हम लोग तो सिटी में रहते हैं, मकान में रहते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, गद्दे और रजाई को ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और फिर भी अंग पर सिकुड़ करके सो जाते हैं ठंड में। इतनी ठंड पड़ती है उसमें, तो जंगल में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है उसको, ठंडी हवा का झपोरा आता है, फिर भी वो कैसे रहते हैं, क्यों रह सकते हैं? इसका अनुभव है कि मेरे स्वरूप में ठंड का प्रवेश
नहीं, बराबर
मेरा स्वरूप नहीं ठंडा होता है, वो अनुभव होता नहीं, उसकी स्थिरता है, जम जाते हैं। इस बार स्वरूप में जम जाते हैं तो रह सकते हैं, वरना कैसे रह सकते हैं? अपने हालत देखो। तो बात तो वो है कि जैसा सुना वैसा अनुभव किया तभी तो काम हुआ, जैसा सुना वैसा अनुभव नहीं होने से कोई काम होता नहीं। तो ये जो है कि जिसको ज्ञान से स्वयं का अवलोकन होता है, वो भी अवलोकन होते होते नजर पैनी होती है, अवलोकन सूक्ष्म होता है, तब ये सूक्ष्म है, सामान्य ज्ञान है वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। पानी, बारिश का पानी मैला है, मिट्टी से मिला हुआ है, लेकिन पानी का स्वरूप निर्मल है। पानी की अवस्था मैली है तभी पानी का निर्मल स्वरूप ज्ञान में लेना एक सूक्ष्म विषय है। ठीक उसी तरह हमें हमारे सूक्ष्म स्वभाव को मालूम करना, हमको अनुभव में आना, ये बात होनी जरूरी है तो उसके लिए हमें अवलोकन की प्रैक्टिस होना जरूरी है। वो अवलोकन की प्रैक्टिस किसको होती है कि जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको ही होती है, दूसरे को नहीं हो सकते। क्योंकि उसकी भावना इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है शुद्धि की भावना, वो लगातार अवलोकन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। और करता है तब उसको विभाव और स्वभाव जाति की पहचान आती है, तब विज्ञान पैदा होता है विभाव से स्वभाव का। और विज्ञान होता है तो उसमें से स्वानुभूति निरंतर दशा आती है। तो प्रोसेस तो प्रैक्टिकली इस प्रकार से है, वो तो प्रोसेस में नहीं आए तो ये जो सूक्ष्म स्वभाव है संज्ञान सामान्य से स्वरूप का अवलोकन है वो तो होने वाला है, कभी नहीं बन सकता, ऐसी बात है।
नियम साहब की 50वीं गाथा की कल बात चलती थी, नियम साहब की 50वीं गाथा की, तो परम पारिणामिक भाव को पर ऐसा कैसे कहने में आया ये बात?
परम पारिणामिक भाव को पर नहीं कहा, चारों भाव को पर कहा, शारीरिक भाव, सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म भाव, उदय भाव, उन चारों का ऊपर कहा है।
उसमें आत्म जागृति में है इसका, उसमें लिखा है कि जो जानना है ये भी मैं नहीं, जानना जो है ये भी मैं नहीं, पारिणामिक भाव वो भी मैं नहीं,
पारिणामिक भाव तो मैं है, वो मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं होता,
जैसा ख्याल है
निकाल के ला रहा
है।
पारिणामिक भाव तो स्वभाव है, वो तो मैं हूँ, वो निकाल मैं हूँ,
जानना मैं नहीं,
जानना एक समय की पर्याय है, तो उसमें स्वरूप की भावना में पर्याय की भावना नहीं होती, चाहे वो जानना केवल ज्ञान हो तो भी, इसलिए मैं उसका निषेध किया है, ये भावना का विषय है। स्वरूप की भावना में सिर्फ अकेला परम पारिणामिक भाव दूसरा कुछ नहीं, ऐसा अभिप्राय ना हो, अभिप्राय से बात चली है। स्वभाव की पहचान आती है, पहचान आने से स्वभाव की जितना महिमावंत स्वभाव है उतनी महिमा पर्याय आने लगती है, वो महिमा आने से महिमा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि विकल्प टूट जाता है, निर्विकल्प स्वरूप की महिमा में उतनी न्यूनता आ जाती है कि विकल्प टूट जाता है, विकल्प का अभाव हो जाता है, और निर्विकल्प दशा में अपूर्व आनंद का अनुभव होता है, तो पता चल जाता है कि मेरे को स्वामी को हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन स्वामी भाव के काल में होता है, उसकी व्याप्ति स्वानुभूति से है।
इस
हाँ ठीक है ठीक है। और दृष्टि का जो स्वभाव है सम्यक दर्शन में, सम्यक दृष्टि का जो स्वभाव है वो स्वभाव ऐसा है कि वो पूर्ण रूप से स्वरूप को स्वीकार करती है, इसके सिवा किसी को स्वीकार नहीं करती, स्वभाव को ही अपना रूप स्वीकार करती है, स्वभाव को छोड़ करके एक समय की पर्याय को भी वो स्वीकार नहीं करती, और इसकी संपूर्ण उपादेयता स्वभाव की ही रहती है, दूसरी कोई उपादेयता दृष्टि में नहीं होती। ऐसे जो कुछ दृष्टि के लक्षण हैं वो तो अपने परिणाम में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने से मालूम पड़ जाते हैं कि हमारी दृष्टि हमारे स्वरूप पर है, कहीं और जगह नहीं है।
तो स्वरूप से बाहर आने के बाद
हाँ
या उस समय तो जानकारी उस समय तो नहीं हो सकता है, स्वरूपाचरण में उस समय नहीं हो सकता है,
हाँ
दृष्टि का जो विषय है वो बाहर आने के बाद ध्यान में आता है,
हाँ
या उसी समय ख्याल में आता है,
उसी समय तो विकल्प नहीं है, विकल्प वाला ज्ञान नहीं है, उसी समय विकल्प वाले बात नहीं है, जैसे एक स्वप्न है, हाँ निर्विकल्पता है, तो स्वप्न में स्वप्न है ऐसा ख्याल नहीं है, जागृत अवस्था में मालूम पड़ता है कि इसकी अवस्था ऐसा,
ऐसे सब कल्प दशा में आते ही पता चलता है कि वो निर्विकल्प दशा हुई थी ऐसा, क्योंकि उस इतना विकल्प निर्विकल्प दशा में तो चलेगा नहीं, चलता नहीं है।
कारण होने पर कार्य होता ही होता है, इसमें उपादान की क्या कारण होने पर कार्य होता ही है, इसमें उपादान का क्या योगदान?
उपादान मैंने निज शक्ति, कारण भी निज शक्ति में है, कार्य भी निज शक्ति से है।
तो पांचों समवाय होंगे, कार्य तभी होगा। ऐसा ऐसा किस अपेक्षा से कथन किया कि कारण होने पर कार्य होता ही है, उपादान को उसने गौर कर दिया?
उसमें उपादान समेत बात है, पांचों समवाय में एक कारण उपादान है, एक कारण तो उपादान है मुख्य कारण, और एक कारण निमित्त है, बाकी जो कुछ है तो सरकार की बात है, तो जो उस कारण में जो होने वाला है वो ही होता है, तो भी उपादान की मुख्यता से ही है।
जो कारण है वो उपादान सहित है?
उपादान सहित मुख्य कारण होता है, निमित्त कारण तो कौन है?
जो भी करता है यानी जो परिणाम है वो मात्र ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कोई परिणाम
कर सकता है?
होने को ही तो परिणाम कहा जाता है, जो होता है वही परिणाम है।
131 नंबर का संवाद दिया था, उसमें वो बात है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, फिर भी अन्यथ इरादा भी मैं करता हूँ या वो दूसरे पदार्थ का कार्य मैं कर सकता हूँ, शरीर का संयोग का, ये भ्रांति है। प्रभाव से करता मोहो व्यवहार का कि मोह है वो भ्रांति है, कर नहीं सकता था, ऐसा ज्ञानी ने अनुभव किया है और प्रसिद्ध किया है, इससे विपरीत अनुभव मिथ्या अनुभव है, उससे विपरीत अनुभव को मिथ्या अनुभव है, इसलिए अज्ञानी का अनुभव को मिथ्या अनुभव कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या श्रद्धान कहते हैं, पर तो वस्तु ऐसी नहीं है।
अवलोकन के समय उसने ये देख लिया राग भिन्न है, राग अलग है, उसे दिख रहा है ये राग है, ये राग की प्रज्ञा है, ज्ञान में उसे स्पष्ट दिख रहा है, फिर भी उसे ज्ञान सामान्य के लिए उसे न दे आ रहे,
उसने क्या एक राग को देखा वो तो नया का ज्ञान में देखा, तब और अवलोकन से देखना है कि इतना नजदीक राग होने पर और राग में एकत्व और ममत्व तीव्र रूप से करने पर भी राग का नाश हुआ, मेरा नाश हुआ, राग का नाश हो गया, मेरा नाश हुआ, तो ज्ञान ज्ञान रूप रहा, ये ज्ञान की जो शुद्धत्व शक्ति है वो सामान्य स्वभाव की है।
तो मतलब मैं शुद्ध हूँ इस अवलंबन से वो बात दिखेगी, कैसे दिखेगी?
हाँ तो मतलब लेकिन क्या है, तो वेदन से अनुभव करता है तब, विचार से निश्चय करता है तब की बात नहीं है,
वेदन से
करता है। वेदन से निश्चय हमारा मार्ग अनुभव प्रधान है, विकल्प प्रधान राग प्रधान नहीं है, ये बात ख्याल में रखें। तो ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है वो ज्ञान सामान्य में है, तो आपको अगर शास्त्र में पढ़ना है तो समय सार की 49 व्याख्या का पांचवा बोल है,
49
व्याख्या कलि ग्रहण की गाथा है, कलि ग्रहण की जो गाथा है पर्व मदन ब्रह्म स्पर्शम चेतना कलि ग्रहण ये गाथा है जो चारों शास्त्र में है, तुलसीदासाचार्य की और धर्म में भी है, उसमें समय सार में एक एक में छह बोल दिया है, आत्मा स्पर्श रूप नहीं है, रूप गंध रूप नहीं है, इसमें छह छह बोल दिया है, अव्यक्त का भी छह बोल दिया है, उसमें पांचवा बोल है ये एक साधारण संवेदन रूप होने से भावेंद्रिय का भी, भावेंद्रिय भी आत्मा का स्वरूप नहीं, यानी भावेंद्रिय से भी वो चखता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, स्पर्श करता नहीं, ये सब बातें एक पांचवें गुरु ने दिया है, एक साधारण संवेदन रूप होने
भाव इंद्रिय में कहने
भाव इंद्रिय में जो भाव से इंद्रिय ज्ञान काम करता है, जैसे मैंने देखा, देखने का मेरा भाव वो मेरे भाव चक्षु इंद्रिय है, सुनने का मेरा भाव वो मेरे कर्णेन्द्र भाव कर्णेन्द्रिय है, द्रवेंद्रिय है जो पुद्गल की रचना है वो द्रवेंद्रिय है, और वहाँ जो उपयोग चलता है वो भावेंद्रिय है,
उपयोग को भावेंद्रिय कहा।
हाँ हाँ, तो वो भी आत्मा का स्वरूप
नहीं नहीं है ऐसा कहते हैं।
बात तो बहुत सूक्ष्म है,
और एक तरफ तो कहते हैं उपयोगी ज्ञान लक्षण, और एक तरफ कहते उपयोगी तेरा स्वरूप नहीं है।
उपयोग मैंने जो उपयोग अंतर में आता है वही उसका स्वरूप है, जो उपयोग बाहर जाता है वो विभाव है उपयोग का, तो इसका स्वरूप नहीं है। स्वभाव है वो स्वरूप है, विभाव है वो स्वरूप नहीं है। ज्ञान में स्वभाव भी है और विभाव भी है, दोनों है। विभावित ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप वो लक्षण है। ऐसे और मिथ्यात्व अवस्था में संसार अवस्था में एक ज्ञान में ही दोनों बात है, स्वभाव विभाव, बाकी सब गुण उल्टे चलते हैं। मिथ्या पूरी पूरी श्रद्धा विपरीत है, चारित्र को नशुराग है, वितराग अकांक्ष नहीं है, सबको पता नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र में से ज्ञान ही ऐसा है कि जो साधन बनता है, इसलिए पंचाध्याय ज्ञान में कम साधन, साधन की निजी की चर्चा की जाए तो साधन आदि विभूति का स्वानुभूति एक हेतु, वो एक ही स्वानुभूति का कारण है, इसलिए ज्ञान को परंपर कहने में आया है। और सारा समय साधन आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र का कई कारण है कि पहचान भी ज्ञान से और कानून हो गए ज्ञान से, दोनों काम ज्ञान के प्रधान का नहीं होता है, कई कारण है।
इसलिए ज्ञान को स्वयं पर प्रकाशित है,
हाँ ज्ञान का पर प्रकाशन भी है, लेकिन पर प्रकाशन में जो भी पर का प्रतिबिंब ज्ञान झेलता है, ज्ञान को इसका कोई प्रयोजन नहीं।
मतलब यहाँ पे ज्ञान विशेष को पढ़ ले और ज्ञान समाज को सुन ले,
ज्ञान
स्वयं पर प्रकाशित नहीं है,
ज्ञान विशेष पर प्रकाशक है,
प्रकाशित है
और ज्ञान
समाज स्वयं पर
स्व प्रकाशक ऐसी बात।
John.